ओम शांति। प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम चर्चा कर रहे थे त्याग, बेहद का त्याग, क्योंकि बाप समान बनने के लिए, बाप के साथ घर वापस जाने के लिए पहले तो वैराग्य वृत्ति, बाद में देह और देह की दुनिया का त्याग। देह में देहभान, देहाभिमान, तो समझ गए। अभी देह की दुनिया में क्या क्या आती है? देह की दुनिया में सबसे पहले तो शरीर का जो कर्मेंद्रियां है, ये तो सबसे पहली दुनिया है हमारी। देह की दुनिया में सबसे पहले हमारी कर्मेंद्रियां आती है, और कर्मेंद्रिया के साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी है, जो मन बुद्धि संस्कार है, इसको हम सूक्ष्म कहेंगे। कर्मेंद्रिया, उसमें ज्ञानेंद्रिया भी है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार, इसका त्याग। और देह की दुनिया में और क्या? दुनिया में दो चीज़ें आती है, व्यक्ति और वस्तु, वैभव। तो व्यक्तियों का त्याग, व्यक्ति भी लौकिक अलौकिक, तो ये सब का त्याग, देह की दुनिया का त्याग माना अपने कर्मेंद्रियों का त्याग, लौकिक अलौकिक संबंधों का भी त्याग और वस्तु वैभवों का भी त्याग। तो आज हम चर्चा करते हैं कर्मेंद्रियों का त्याग। कर्मेंद्रियों का त्याग माना क्या? कर्मेंद्रियों को पूरा छोड़ देंगे? नहीं नहीं, जैसे देह का त्याग अर्थात शरीर को छोड़ना नहीं, देहभान का, देहाभिमान का त्याग। देह को तो संभाल के रखना है, ये बहुत वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल है, इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आत्मा शरीर के बिना कुछ कर ही नहीं सकती है, शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देह का भान का त्याग, देहाभिमान का त्याग, इस प्रकार कर्मेंद्रियों का त्याग माना कर्मेंद्रिय जीत बनना, कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनना, उसकी अधीनता का त्याग। आज दुनिया में हम देखते हैं कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक अपने अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम है। होगा 6 फुट हाइट का व्यक्ति, लेकिन 2 इंच अपना जुबान का गुलाम है। तो हम ये कर्मेंद्रियों को कैसे अपने पूरा काबू में रखें, कंट्रोल में रखें, उनकी अधीनता से मुक्त हो जाएं, इसको कहते हैं कर्मेंद्रियजित बनना, कर्मेंद्रियों का त्याग करना, उनकी अधीनता को त्याग करना। कर्मेंद्रियां क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ जाएं। जैसे कोई एक अपना घर को त्याग कर दिया, लेकिन घर का एक छोटी सी चीज़ पर भी उसका अगर आसक्ति है, मोह है, तो संपूर्ण त्याग तो नहीं कहेंगे ना। ठीक इसी प्रकार ये देहभान, देहाभिमान को तो त्याग लिया, लेकिन देह के ये कर्मेंद्रियाँ, ये देह की सामग्रियाँ हैं। ये कर्मेंद्रियों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा हमें, ये कर्मेंद्रियाँ क्या चीज़ है। हम सुनते हैं ज्ञानेंद्रियाँ भी कुछ है, वास्तव में कर्मेंद्रियाँ जो है ज्ञानेंद्रियाँ भी वो है, और मुख्य 5 है। कर्मेंद्रियाँ अर्थात जिन इंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हाथ से कर्म करते हैं, हाथ एक कर्मेंद्रिय है। इसी प्रकार हमारी आँखें, आँखों द्वारा हम देखते हैं, ये भी एक कर्मेंद्रिय है। मुख द्वारा बोलते हैं, खाते हैं, ये भी एक कर्मेंद्रिय है। कान द्वारा सुनते हैं, ये भी एक कर्मेंद्रिय है। नाक द्वारा सूंघते हैं, ये भी एक कर्मेंद्रिय है। तो मुख्य रूप में ये 5 ये हमारे कर्मेंद्रियाँ हैं। क्या क्या बताया? आँख, नाक, कान, मुख और हाथ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी है। जैसे उदाहरण के रूप में आप मुख द्वारा बोलते हो, तो बोलना एक कर्म है, लेकिन कुछ चीज का आप, मान लीजिए आप खाना खाया, कोई चीज का स्वाद का आपको अनुभव हुआ, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो उसका ज्ञान आहरण किया आपने, उस कर्मेंद्रिय द्वारा आप ज्ञान का आहरण किया। जैसे आप आँख द्वारा आप कोई चीज़ को देखते हो तो उसके बारे में आपको पता चलता है कि यहाँ रास्ता ठीक है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ झाड़ी है, यहाँ खड्डे हैं, आपको ज्ञान समझ तो आ रहा है ना। तो आँखों द्वारा आपको समझ आ रहा है, तो आँख ज्ञानेंद्रिय भी है। लेकिन आँख कर्मेंद्रिय भी है, आँख द्वारा कर्म भी करते हो, बहुत कुछ कर्म करते हैं आप। कोई किसी को गुस्सा कोई करता है, कभी कभी आप देखे होंगे वो मुख से कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आंख दिखाएगा ऐसा, तो आंख दिखाना भी तो एक काम है। तो इसी प्रकार हर कर्मेंद्रिय द्वारा जब उससे ज्ञान आहरण कर रहे हो उस समय वो ज्ञानेन्द्रिय के रूप में काम करते हैं। तो ये कर्मेंद्रियाँ भी पाँच, तो ज्ञानेन्द्रिय भी पाँच। ये दसों पर जो संपूर्ण अधिकार रखता है अर्थात उसका राजा बनकर चलाता है वही दशरथ है। ये शरीर एक रथ है, इस शरीर रूपी रथ में ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां उनका जो राजा है वो दशरथ, दशरथ राजा दिखाते ना रामायण में सुनते हम, वही राजा है। इसलिए जो कर्मेंद्रजीत बनता है उसको स्वराज्य अधिकारी भी कहा जाता है, कर्मेंद्रजीत स्वराज्य अधिकारी। तो कर्मेंद्रजीत बनना अर्थात कर्मेंद्रियों की अधीनता से मुक्त होना, जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक ये रूहानी उड़ान, ये रूहानी यात्रा में सफल नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। ये कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देने वाले हैं, कर्मेंद्रियां ऐसा धोखा दे देंगे बाप से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल बाप से बहुत दूर ले जाता, माया के मुरीद बना देते हैं। कर्मेंद्रियां अगर धोखा दे दिए फेल हो गए तो फेल। अंत में कर्मेंद्रिया जब धोखा दे देगी चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। इसलिए देखिए हमारी पढ़ाई में श्री कृष्ण को संपूर्ण पास्ट स्टूडेंट कहा जाता है और राम जी को चंद्रवंशी दिखाया गया है। जो सूर्यवंशी है इसी सूर्य पढ़ाई में पास है, लेकिन चंद्रवंशियों को भावा कहते फेल स्टूडेंट है। राम जी कैसे फेल हो गए, किस में फेल हो गए? बाबा कहते हैं काम विकार पर तो संपूर्ण विजय प्राप्त किए थे, इसलिए आज तक भी मर्यादा पुरुषोत्तम कह के राम जी को इतनी पूजा कर रहे हैं लोग, उनकी भगत कितनी है। परंतु बाबा कहते हैं वो गुस्सा नहीं छोड़ पाए, जिसके कारण और योग शक्ति की कमी के कारण वो क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वो ईश्वरीय पढ़ाई में फेल स्टूडेंट है। तो कर्मेंद्रियां हमको इस पढ़ाई में फेल करा देगी। अगर भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना है, इस पढ़ाई में पास हुई तनर्स होना है, नंबर वन स्टूडेंट बनना है, तो कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा। और स्थिति भी एक रस रहेगी, जिसके कर्मेंद्रियां जिसको हिलाते रहते हैं कभी एक रस स्थिति का अनुभव कर ही नहीं सकता है, हलचल होता ही रहेगा। कभी कोई कर्मेंद्रिया धोखा दे देगा, कोई कर्मेंद्रिया धोखा दे देगा, कभी एक रस हो ही नहीं सकता है। तो जब तक हम कर्मेंद्रजीत नहीं बनते हैं हम बाबा के साथ जा नहीं सकते हैं। जैसे बताया कि कोई घर तो त्याग कर दिया लेकिन घर की एक चीज़ में मोह अगर है तो संपूर्ण त्याग नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार हम देहभान देह अभिमान को तो त्याग लिया लेकिन कर्मेंद्रिय को अगर नहीं जीत पाए तो संपूर्ण त्याग नहीं माना जाएगा, यही बाबा के साथ जाने नहीं देगा, जा ही नहीं सकते। तो कर्मेंद्रजीत अर्थात जो देखना चाहते हैं वही देखें, जो नहीं देखना है नहीं देखना है, जो नहीं सुनना है नहीं सुनना है, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, जो नहीं खाना है नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए हमें कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे। बिल्कुल आत्मा राजा बनकर हर कर्मेंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय को अपने बस में रखे तब कहेंगे संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत। लेकिन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार ये भी इंद्रियाँ हैं, लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले स्थूल की बातें हम चिंता करते हैं, बाद में हम चिंता करेंगे उसके बारे में। मन बुद्धि संस्कार पर भी जीत पाना है। क्योंकि आत्मा राजा को स्वराज्य अधिकारी बन, मन को भी जैसा चाहे चलाए, बुद्धि को भी जैसा चलाए, संस्कार भी हमें धोखा ना दे, क्योंकि अंत में मन अगर एकाग्र नहीं हो पाया, फेल हो गए, मन इधर उधर कहीं भी भटक रहा है, तो हम बाबा के इशारा को कैच नहीं कर सकते हैं, बाबा के साथ जा नहीं सकते हैं। हमारी पढ़ाई का सार है मन मनाभव, मन को सारी दुनिया से हटाकर बाबा में लगाना, तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कर्मेंद्र जीत बनना, कर्मेंद्रियों की अधीनता पर विजय प्राप्त करना, उसका त्याग करना, अधीनता को त्याग करना। कैसे त्याग करें? दुनिया में कर्मेंद्रिय जीत जो नहीं है, कर्मेंद्रियां धोखा दे देती है, इवन मौत की सजा दे देती है, बहुत धोखेबाज है कर्मेंद्रियां। भक्ति में इसका तो बहुत सारे उदाहरण है, आप सूरदास की कहानी सुने होंगे, ये आंखें सबसे बड़े धोखेबाज हैं, इसलिए सूरदास जी ने तो अपने आंखों को फोड़ दिए, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं तो बुद्धि भटकती है, दृष्टि वृत्ति खराब होती है, इसलिए वो आंखों को ही फोड़ दिए। और हमारे जो स्वाद है ये भी बहुत धोखा देते, लोग जो नहीं खाना चाहिए खा लेते हैं, फिर जैसा अन्न ऐसा मन, ऐसा तन ऐसे बीमारियां भी हो जाती है। तो खान पान बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये भी लोगों को धोखा देते हैं। तो ये सब बातों को त्याग करने के लिए पहले हमें अच्छी तरह से समझ चाहिए, इसकी हमें इसकी पूर्ण जानकारी भी चाहिए। और कर्मेंद्रजीत जो नहीं बन पाता है, कर्मेंद्र से धोखा खाता है, उसको क्या सजा मिलती है, हम बहुत सारे कहानी हम भक्ति में पढ़ते थे, सुनते थे, आप सभी सुने भी होंगे। देखिए ऐसा उदाहरण है, एक एक इंद्रिय कैसे मौत की सजा देती है, आप सुने होंगे। देखिए हमारे आंखें कैसे हमें धोखा देती हैं, आप समा और परवानों का उदाहरण आप ले सकते हो। जब समा बहुत सुंदर, दूर से उसका रूप इतना आकर्षणमय है कि परवाना एकदम नज़दीक आके स्वाहा हो जाती है, तो मौत का खाली वो जो उसकी सुंदरता में फिदा हो गए, देखो मौत का सजा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप देखे होंगे जो भंवरा है, अब कमल पुष्प पद्म फूल इतने सुंदर, उसकी खुशबू इतना अच्छा है कि भंवरा सारा दिन खिला हुआ पद्म फूल के अंदर उसका जो खुशबू है वो लेता रहता है, लेकिन जब शाम हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, पद्म फूल अपनी पंखुड़ियों को समेट लेती है, जिसके कारण कमल फूल बंद हो जाता है, तो भंवरा अंदर ही रह जाता है और वो सफोकेशन में उसका मौत हो जाता है। जब शाम होता है तो वहाँ से उड़ जाना चाहिए, लेकिन उड़ता नहीं है, जिसके कारण वो मौत की सजा उसको प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप देखे होंगे एक मछली, जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक धागा में एक कांटा होता है, एक हुक जैसा, जिसमें कुछ खाने पीने का चीज़ लटका देते हैं और पानी में उसको डाल देते हैं। मछली देखती है तो ये खाने पीने की चीज़ है, फट से एकदम जब उसको खाने लगते हैं तो कांटा में फंस जाती है, मौत की सजा, उसको स्वाद देखो कितना धोखाबाज है। इस प्रकार आप हिरण का उदाहरण ले सकते हो, हिरण को शिकारी कैसे पकड़ते हैं जानते हैं आप, हिरण को बहुत सुंदर म्यूजिक बजाते हैं और म्यूजिक का जो तान है उसको सुनते 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 हिरण आकर्षित होके एकदम वो म्यूजिक की तरफ भागता है, फिर शिकारी उसको पकड़ लेता है, मार लेता है। हाथी, जब एक हाथी को पकड़ना होता है क्या करते हैं जानते हैं, एक पहले एक हाथीनी को एक तैयार करते हैं और एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार करते हैं और हाथीनी को वो खड्डे के पास उसको ट्रेनिंग दिया जाता है पहले। तो हाथी पहले हाथिनी के पीछे भागता है, हाथिनी के पीछे भागते 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 वो खड्डे में गिर जाता है, ताकि फिर वो पकड़ में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, एक एक कर्मेंद्रियां कैसे हम दुनिया में देख सकते हैं, इसका उदाहरण कैसे मौत की सजा देने वाले हैं। तो जो कर्मेंद्रजीत नहीं बनेगा, इस भवसागर से वो पार हो ही नहीं सकता है, वो धोखा ही खाएगा। अंतिम उड़ान के लिए हमें कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। इस सिलसिले में बहुत एक सुंदर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक देश में बहुत बड़ा एक राजा था, बहुत प्रजा को बहुत प्यार करता था, पालना भी देता था, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं थे। राजा बूढ़ा हो गया, जब बूढ़ा हो गया सोचा अभी तो मर जाऊंगा, किसी न किसी प्रजा को तो वारिस बनाना पड़ेगा। तो देश में वो ढिंढोरा पिटवाया। क्या ढिंढोरा पिटवाया? कि कल सवेरे सवेरे एकदम अर्ली मॉर्निंग जो पहले आके मुझे राजमहल में गुड मॉर्निंग करेगा, उसको मैं इस देश का राजा बना दूंगा। पहले पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा, जो आके गुड मॉर्निंग करेगा उसको मैं राजा बना दूंगा। जब ढिंढोरा पिटवा गया, बहुत लोग तो विश्वास ही नहीं किए, हाँ ऐसे ही राजा बना देगा, फालतू बात है, कोई माने ही नहीं। लेकिन बहुत लोग सोचे कि अरे यार, हम जाके अगर राजा बन जाएं तो क्यों नहीं प्रयास किया जाए। तो कुछ लोग तो रात को 12 बजे से भागे, और आप जानते होंगे जो राजाओं के महल होते हैं वो शहर से थोड़ा सा दूर, जहाँ राजमहल बहुत अंदर होता है, बाहर बाउंड्री होता है, बाउंड्री के अंदर अंदर बहुत काफ़ी चलना पड़ता है। तो बाउंड्री में गेट कीपर होता था, तो जब लोग 12 बजे भागे, गेट कीपर उनको रोका, बोला कि अभी सवेरा नहीं हुआ है, इतने रात को थोड़ी जाने देंगे अंदर, आप वेट करो सवेरे गेट खुलेगा। तो कोई 12 बजे आए, कोई 1 बजे आए, कोई 2 बजे आए, कोई 3 बजे आए, सवेरे सवेरे दौड़ के सब कि हम पहले जाके गुड मॉर्निंग करेंगे। 5 बजे तक गेट बंद रहा, 6 बजे तक गेट बंद रहा। 6 बजे के बाद जब गेट खोल देता है, बहुत लोग भीड़ हो गए थे तब तक, सब उमड़ पड़े एकदम अंदर, कई तो रात को 12 बजे से आके बैठे हैं। गेट खोलते ही इतना सुंदर गार्डन, इतनी ठंडी हवा और पंछियों का आवाज़, इतना सुंदर वहाँ झरने। तो लोग उस सुंदरता को देखकर विमोहित हो गए, कहते अरे राजा को तो ठीक है मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इसका भी थोड़ा सा सुंदरता का सुख ले लें, कितनी ठंडक है, कितना बढ़िया सुंदर है गार्डन है। तो कुछ लोग वहाँ अटक गए, कहते थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स होने दो, राजमहल तो दिखता नहीं है, यहाँ कितना दूर है अंदर, कितना दूर चलना पड़ेगा, देखते हैं कोई बात नहीं। तो कुछ लोग वहाँ अटक गए, कुछ लोग सोचे नहीं नहीं राजा से मिलना है, राजा बनना है, चलना है, और आगे चले। आगे चले तो बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, पकवान, बहुत सुंदर सुंदर खाने पीने, एकदम गरम गरम बन रहा है, जो खाना है खाओ मुफ्त, जितना खाना है खा लो, साथ में लेके जा सकते हो। तो रात भर नेचुरली 12 बजे से आके लोग खड़े हैं गेट के सामने, तो सवेरे सवेरे कितना भूख लगता होगा सोच लीजिएगा। तो लोग खाने पीने में सोचे कि अरे यार राजा तो मिलेंगे, राजमहल तो बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है, पहुंच जाएंगे कोई बात नहीं, पहले तो खा लें पेट भर के, इतना सुंदर मिल रहा है खाने पीने की चीज़। तो कुछ लोग वहाँ उलझ गए, कुछ लोग सोचे यार यार बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं चलते हैं पहले बाबा को मिल, पहले राजा को तो मिलते हैं। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 जाके देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर पहनने के कपड़े, सब प्रकार के ड्रेस उपलब्ध है। घर में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर सब कुछ, जो लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो, अपने लिए भी जो पहनना है पहनो, सुंदर सुंदर एकदम सब प्रकार के पहनने के साधन। कुछ लोग सोचे अरे राजा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, राजा बनेंगे नहीं बनेंगे, तो मुफ्त मिल रहा है पहले इसको तो ले ले। तो लोग उसमें उलझ गए और आगे बढ़े कई लोग, और आगे बढ़ते समय देखते हैं कि सोने के इतने ऑर्नामेंट्स, एकदम प्योर गोल्ड का, इतने डायमंड भी लगा हुआ है, इतने सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स, बात मत पूछो, जो लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो। तो कुछ लोग वहाँ उलझ गए, अरे ये ले लेते हैं बाद में देखते हैं राजा बने ना बने। फिर कुछ लोग कहते नहीं नहीं ये सब जरूरत नहीं, फिर आगे बढ़े। तो ऐसे रास्ते में इतने सारे आकर्षण करने वाली चीज़ें थी, बात मत पूछिए। तो आगे बढ़ते 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 राज आखिर बहुत दूर था राजमहल, राजमहल तक एक ही व्यक्ति पहुंचा। और वो ये एक व्यक्ति जाके राजा को जब गुड मॉर्निंग करता है, राजा उसको ही वारिस बना देता है। कहने का सार था कि इस कहानी का सार है, मेरे भाई और बहनों, इस संसार में ये कर्मेंद्रियाँ अंत में धोखा देने वाले हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग में राजा महाराजा बनाने के लिए आया हूँ, विश्व महाराजन बनाने के लिए आया हूँ। तुम छोड़ो इस दुनिया की, पुरानी दुनिया की एक सब आकर्षण, ये माया के आकर्षण है, माया के पंप है, क्यों इसमें उलझ रहे हो, छोड़ो ये सब चीज़ें। लेकिन समझ होते हुए भी कई बाबा के बच्चे ये सब में उलझे हुए हैं, तो कैसे राजा बन सकते हैं? तो कर्मेंद्रियाँ जिनको धोखा देंगे वो कभी भी भविष्य में राजा नहीं बन सकते हैं। यहाँ जो स्वराज्य अधिकारी है, कर्मेंद्रजीत है, वहाँ भविष्य में राजा बनेंगे। हम कितने भी सेवा कर लें, कितनी भी सेवा कर लें, बाबा कहते हैं पहले स्व सेवा नहीं किए, कर्मेंद्रजीत नहीं बने, वहाँ राजा नहीं बन सकते हो। यहाँ सेवा करेंगे हम, और वहाँ देखेंगे जाके बैठा है दूसरा कोई राजा। तो इसलिए खाली सेवा करने से उच्च पद नहीं मिल सकता है। जब तक तपस्या द्वारा अपने कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल नहीं बनाते हैं, कर्म इंद्रियों को पूरा अधीन में नहीं रखते हैं, कभी भी राजा नहीं बन सकते। तो उच्च पद पाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। दूसरी बात, ऐसे भी हम बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आज दुनिया में खान पान के कारण ही लोगों को कितनी बीमारियाँ दिखी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों का कारण क्या है? जड़ तो यही है, जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं, सब गंद चीज़ें खा रहे हैं। अरे मेरे भाई और बहनों, हम कितना लक्की है, बाबा ने हमको पहले से ही ये सब ज्ञान दिया है, हमें क्या खाना, क्या पीना, कितना खाना, कैसे खाना। तो ऐसे ही हम बाबा कहते हैं सिनेमा बच्चे, आजकल दुनिया में मूवी में क्या है, क्या है काम और क्रोध के सिवाय क्या है, बताइए तो सही, कुछ सीखने के लिए कुछ है? इसलिए हम बाबा तो कहते हैं सिनेमा मना सिन की माँ, तो हम सभी सुरक्षित हैं, ये सब बातें हमें धोखा नहीं दे सकते। तो कोई भी कर्मेंद्रिया हमें धोखा ना दे, तभी स्वराज्य अधिकारी होंगे। आप सभी बहुत एक सुंदर रामायण की कहानी मैं सुना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। रामायण में रावण सबसे लास्ट में मरता है ना नहीं? लेकिन उससे पहले सारी उनकी सारी सेनानी, जितने भी सेनानी थे सब तो मर गए। बाद में कुंभकर्ण मरता है, कुंभकर्ण के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था, याद है सभी को? ये तो कहानी है, ये हमारी शिक्षा के लिए, हमें उससे सीख लेने के लिए ये सब हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कहानी बना के गए हैं ताकि उससे कुछ सीखें। तो रावण का बड़ा बेटा जो था उसका नाम था मेघनाद। रामायण सीरियल देखे होंगे आप सभी, देखना कैसा उसका आवाज़, कितना कड़क, कैसे गरजता था। लेकिन उसका दूसरा नाम क्या था, क्या था? दूसरा नाम था इंद्रजीत। अच्छा, इंद्रजीत जब मरा तो जाके रावण मरा, क्या मतलब? पहले हमारे पुरुषार्थ में छोटे छोटे विकारों को तो खत्म कर देना बहुत आसान है, इजी है। हमारे पुरुषार्थी जीवन में सबसे बड़ा एक बाधक है आलस्य, अलबेलापन, जो कुंभकर्ण का प्रतीक है। ये छठा विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य विकार है जो रावण का प्रतीक है। लेकिन छठा विकार आलस्य, ये सबसे बड़ा विकार है आलस्य, अलबेलापन। व्यक्ति के पास कितनी भी विशेषता क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में आलस्य, अलबेलापन है तो बाकी सब जीरो हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं करता है वो, उसका भाग्य भी खो देता है। तो आलस्य, अलबेलापन को जब तक हम नहीं त्याग करते हैं, इस ईश्वरीय पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अंतिम उड़ान के समय भी हम कहेंगे, उस समय हम ठीक है, तैयार हैं, चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहें चलो बच्चे उस समय कहेंगे रुको बाबा थोड़ा सा तैयारी करता हूँ है ना, कईयों का संस्कार टाइम पर कभी तैयार नहीं होंगे, कभी तैयार नहीं होंगे। अरे स्पिरिचुअलिटी का मुख्य गुण हमारा पंक्चुअलिटी है, हम अगर किसी बात में पंक्चुअल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो हम फेल है, फेल स्टूडेंट है। तो आलस्य अलबेलापन सबसे बड़ा धोखेबाज है, ये अंत में सबको धोखा दे देंगे देखना। जैसे आप तैयारी किए हो कहीं जाने के लिए, अब जाते जाते एक सेकंड के लिए आपका ट्रेन छूट गया और पहुंचे लेट, छूट गया ना, गया ना एक सेकंड। ऐसे ही बाबा कहते हैं अंतिम उड़ान के लिए एक सेकंड का टाइम होगा, 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में जो उड़ गया बाबा के साथ, 2 सेकंड भी लगा तो फेल रह जाएगा इधर। इसलिए आलस्य अलबेलापन का त्याग, उसके बाद कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, जो इंद्रजीत है कर्मेंद्रजीत, वास्तव में कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, तो ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम मार सकेंगे। रामायण में इसका वही एग्जाम्पल बताया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनिए सभी, जो हमें सीखने की आवश्यकता है। इंद्रजीत को किसने मारा, इंद्रजीत को किसने मारा, रामायण में क्या व्याख्यान है? इंद्रजीत को मारने वाला लक्ष्मण था, लक्ष्मण ने ही इंद्रजीत को मार सका। वो राम जी की बस की बात नहीं थी, राम जी उसको मार नहीं सके, आखिर लक्ष्मण ही इंद्रजीत को मार सका। क्या मतलब, क्या मतलब, क्यों? इंद्रजीत को रामायण में वर्णन है कि इंद्रजीत को एक वरदान मिला था, वो बहुत कठोर तपस्या किया था, उसको एक वरदान मिला था कि अगर कोई 14 साल तक 4 बातों का त्याग किया हो तो ही आपको मार सकेगा। उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि 4 बातों का त्याग, क्या क्या? आहार, विहार, निद्रा और मैथुन, ये 4 बातों का अगर कोई त्याग किया है 14 साल तक तो ही आपको मार सकेगा। जिसमें एक लक्ष्मण ही योग्य थे, उनके अंदर ही ये 4 बातों का त्याग का उनका जीवन का उनकी धारणा थी, जिसके कारण लक्ष्मण जी उसको मार सके। कैसे? देखिए रामायण में दिखाते हैं, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला जी को छोड़ दिए अयोध्या में, और भाई जी के साथ, बड़े भाई के साथ वनवाह में आए। तो 14 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जो लास्ट कंडीशन बताया, आहार, विहार, निद्रा, मैथुन, मैथुन माना ब्रह्मचर्य व्रत, तो पक्के ब्रह्मचारी रहे। निद्रा, रात को वो पहरा देते थे जंगल में, भाई और भाभी के लिए रात भर पहरा देते थे, निद्राजित थे 14 साल तक। और विहार अर्थात घूमने फिरने का शौक, बहुतों को होता है ना, ये जाके देख के आऊँ, वहाँ जाके देख के आऊँ, थोड़ा घूम के आऊँ, वो करूँ। अरे ये पुरानी दुनिया है, कीचड़पट्टी है चारों तरफ, क्या रखा है, क्या रखा है इस दुनिया में, ये पुरानी दुनिया का क्या देखना है, कहाँ घूमना है? स्वर्ग के साथ अगर भेंट किया जाए तो ये दुनिया में रखा क्या है? मुझे याद है एक बार ब्रह्मा बाबा रमेश भाई जी, जो हमारे अकाउंट संभालते थे, अनुभव सुना रहे थे, कि एक बार ब्रह्मा बाबा को रमेश भाई जी ने कहा, बाबा चलो आपको थोड़ा बम्बे घुमा के लेके आता हूँ। बाबा ने क्या कहा जानते हो? बाबा ने कहा, अरे बच्चे तुम क्या दिखाने लेके जाओगे, क्या बंदरों का थोड़ा दिखाने लेके जाओगे? इस दुनिया में है क्या, सब बंदर ही तो हैं और क्या, तो जहाँ जाओ पड़ खावड़ वही आदमी, वही कितना भी गोरी चमड़ी भले क्यों ना हो, आत्मा तो सबकी काली है, क्या देखना है दुनिया में। तो इसलिए लक्ष्मण जी तो सब त्याग करके जंगल में क्या घूमना है, क्या देखना है, तो वो बिहार त्याग किए थे। लेकिन आहार, आहार माना रामायण में वर्णन है कि सीता जी जो भी देते थे वो खाते भी नहीं थे, वो सब रख देते थे। और ये तो कहानी है, कोई 14 साल तक बिना खाए रह नहीं सकता है, लेकिन इसका सार है, कहने का मतलब है, बिना सोए भी कोई कैसे रह सकता है? आहार का त्याग करना माना उसके आकर्षण में नहीं आना, जीव के बस होके खाना वो नहीं, अनासक्त वृत्ति से जीने के लिए जितना आवश्यक है हम अगर खाते हैं तो वो है आहार का त्याग। इसी प्रकार घूमने फिरने का शौक नहीं, अगर जरूरी है सेवा अर्थ कहीं जा रहे हैं अलग बात है। इसी प्रकार निद्रा माना निद्राजित माना बिल्कुल नहीं सोना, ऐसा नहीं है। जैसे कर्मेंद्रियजित माना कर्म को अपने कर्मेंद्रियों को अपने बस में रखना, ठीक इसी तरह निद्राजित माना नींद को अपने बस में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, जितना चाहिए उतना सोना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए 4-5 घंटा की नींद सफिशियंट है। इसके बारे में डॉक्टर्स बहुत बातें कहेंगे, कोई कहेगा 8 घंटा सो, कोई कहेगा 10 घंटा सो, लेकिन बाबा हमारे कहते हैं जो दुनिया वाले हैं भोगी हैं उनके लिए 8 घंटा नींद चाहिए, लेकिन जो योगी बच्चे हैं उनके लिए तो आधी नींद चाहिए। मैं जगदीश भाई को खुद ही पूछा था, जगदीश भाई कहते थे मैं 35 साल तक 2 बजे से पहले उठाऊँ और उठ के नहा धो के पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करता था। जब मधुबन आते थे 2 बजे सार्फ बाबा का कमरा का लाइट चलता था, तो कहते थे मैं तैयार होकर रहता था बाबा का कमरा का लाइट कब चले मैं जाके पहले गुड मॉर्निंग करता था। 2 बजे से पहले वो नींद को त्याग के 35 साल। तो उनका अनुभव है, मैं उनको एक बार पूछा कि भाई साहब कितना घंटा सोना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन से बहुत लोग बहुत बातें सुनाएंगे, मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया हर प्रकार। तो उन्होंने कहा मेरा अनुभव है हमें 5 घंटा सोने की आवश्यकता है। बाबा कहते 4-5 घंटा 4-6 घंटा सो जाओ कोई बात नहीं फ्रेश होके, तो उसको निद्राजित कहेंगे। तो लक्ष्मण ने 14 साल तक ये 4 बातें आहार विहार निद्रा मैथुन इसका त्याग किया था, इसलिए वो इंद्रजीत को मार पाया। कहने का मतलब है बाबा भी हमारी दादियों को 14 साल तक पूरा क्वारंटाइन में रखे थे, कट ऑफ करके लौकिक दुनिया के अपने मित्र संबंधियों का लेटर भी पढ़ने नहीं दिए, मिलना तो बहुत दूर की बात है। बाबा सबसे कट ऑफ करके त्याग कराए, तपस्या कराए, कर्मेंद्रजीत बनाए, फिर बाबा ने कहा जाओ शिव शक्तियाँ अभी समग्र विश्व की सेवा करो, शिव संदेश दो, परमात्मा शिव का इस धरा पर अवतरण हो चुका है। तो मेरे भाई और बहनों 14 साल का इसलिए गायन है, तो हमें कर्मेंद्रजीत बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा, स्वराज्य अधिकारी बनकर एकदम बिल्कुल मालिक बनकर एक एक कर्मेंद्रिय को पूरा अपने कंट्रोल में रखना, चेक करना, अटेंशन बार बार अटेंशन, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, अभ्यास करना पड़ेगा और बाबा के प्यार में समा जाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी त्याग करा सकता है, बाबा के प्यार में सब कुछ त्याग करना संभव है। तो इसलिए हम कर्मेंद्रजीत बने और बाबा के आस को पूर्ण करें, कर्मेंद्रजीत का त्याग करें, अधीनता का त्याग करें, तो ही हम बाबा के साथ उड़ पाएंगे। फिर हम सुनेंगे कि मन बुद्धि संस्कार पर भी कैसे विजय प्राप्त करें, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति।